ओमज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सक्रजातं सगणरघुनाथमितं तं सजीवं स्वादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिस्वे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त बृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। तो आप सभी प्रातःकाल उपस्थित इस कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक हृदय से स्वागत करते हैं। तो आज हमें सो अवसर प्राप्त हुआ है श्री चैतन्य चरितामृत के इस प्रयार को के ऊपर हमें कुछ चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने सभी शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। इसके साथ साथ अपने दीक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद सभी गुरु परंपरा के चरण कमलों का स्मरण करते हुए और हमारे इस मंदिर के जो आराध्य देवता है श्रादा राधिका रमन जी कृष्ण बलराम जी गौर नित्या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी सुदर्शन जी की चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि इस आज के जो सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है इसके ऊपर गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कुछ हम इसमें सेवा कर सकें। तो आज हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 का श्लोक संख्या 254 का जो है हम पाठ करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बोलिए। सर्वत्याजी जीवेर कर्तव्य कोनो बास सर्वत्याजी जीवेर कर्तव्य कहाँ बास ब्रजभूमि वृंदावन इहा लीला राज ब्रजभूमि वृंदावन इहा लीला राज। इसका शब्दार्थ सर्व सब कुछ त्याजी त्याग कर जीवेरा जीव का कर्तव्य कर्तव्य कहाँ कहाँ वास निवास ब्रज भूमि ब्रज की भूमि वृंदावन वृंदावन यहाँ जहाँ लीला रास भगवान कृष्ण ने रासलीला रची। इसका अनुवाद तात्पर्य सुनते श्री प्रभुपाद की श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, जीवों को अन्य सारे स्थानों को त्याग कर कहाँ रहना चाहिए? रामानंद राय ने उत्तर दिया, उसे वृंदावन या ब्रजभूमि नामक पवित्र स्थान में रहना चाहिए, जहाँ भगवान ने रास नृत्य किया था। तात्पर्य, श्री भागवत में के अनुसार, असमोह चरण रेणु जुषाम महम श्याम वृंदावन किमपि गुल्म लता औषधि नाम ये दुस्तज स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजे मुकुंद पदवीं श्रुति भी विमुख्यात। उद्धव ने कहा, मैं वृंदावन की वह लता का पौधा बनना चाहता हूँ, जिसे मुकुंद के चरण कमलों की पूजा करने के लिए परिवार का मित्रों से अपने सारे संबंध तोड़कर गोपियों ने अपने पैरों से रौंदा हो। उन चरण कमलों की खोज वैदिक साहित्य के अध्ययन में दक्ष सभी बड़े बड़े संत करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा तात्पर्य है, और जैसे कि हम इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग को सुनते हुए आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जी का संवाद, तो हम देखते हैं कि इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिले और वहाँ पे बड़ी ही गुह्य चर्चाएं हुआ, और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य की जो चर्चाएं हम कई दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है सभी चीज़ों में। सबसे पहले तो अभी जो है चर्चा, जो प्रसंग समाप्त हुआ है, यही था कि हमें भक्तों से किस प्रकार जो है प्रेम होना चाहिए, भक्त लोग हमारा जीवन में क्या है, इन स्थानों का वर्णन जो है रामानंद राय जी ने किया। वास्तव में देखा जाए श्री चैतन्य महाप्रभु ही ये बात सब कहना चाह रहे थे, लेकिन भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए अपने भक्तों के मुख से जो है ऐसे बुलवाते हैं। जो भगवान कहना चाहते हैं वही जो है अपने भक्तों से भी वही बुलवाते हैं, तो भक्त जो है भगवान का संदेश को ही दोहराते हैं। तो वास्तव में देखा जाए रामानंद राय जी के मुख से जो है स्वयं वक्ता श्री चैतन्य महाप्रभु ही। रामानंद राय जी कह रहे थे कि वास्तव में जो ये जो चर्चाएं जो है मैं कहने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन आप ही जो है मेरे मुख से जो है बुलवा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है जो आज जो प्रसंग हमें जो प्राप्त हुआ है यही था, सर्वत्याजी जीवेरे कर्तव्य कहां वास, ब्रजभूमि वृंदावन यह लीला रास। मनुष्यों को सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम ब्रज, अहम तुम सर्व पापभ्य मोक्ष यस्मि मा सुचा। तो भगवान ने कहा कि सभी को छोड़कर मेरे पास आओ, और यहाँ से चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं सभी जीवों को सब कुछ छोड़कर कहाँ जाना चाहिए कि वृंदावन, वृंदावन में जाके वास करना चाहिए। कहाँ वास करना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, तो वृंदावन है। तो देखते हैं कि जो ये जो प्रसंग है ये सामान्य प्रसंग नहीं है, जीवन के सर्वोच्च स्तर को ले जाने के लिए विशेष करके भक्तों के लिए जो है ये टीचिंग है, भक्तों के लिए शिक्षा है। हम जानते भी हैं जो श्री चैतन्य चरितामृत जो है एक पोस्ट ग्रेजुएट जो है जो इसका शिक्षाएं हैं, ये अध्ययन है। तो सभी जीवों को मतलब ये खास करके जो है भक्तों को कहा जा रहा है, भक्तों के जीवन के लागू होता है। सब कुछ छोड़ो कहाँ जाना चाहिए कि जहाँ वृंदावन, जहाँ ब्रजभूमि वृंदावन, जहाँ लीला रास, ब्रज में वृंदावन में जहाँ श्री कृष्ण ने रासलीला किया, तो उस स्थान पे जो है सभी को जाकर वहीं जो वास करना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। तो हमारा जीवन का लक्ष्य जो है यही होना चाहिए कि जो है हम भगवान के धाम में श्रीधाम वृंदावन में हम वास करें, जो हमें जो प्राप्त हुआ है हम सबका अधिकार है, क्योंकि हम सब देखा जाए हम सब श्रील प्रभुपाद जी के पोते हैं। प्रभुपाद ने कहा मेरा घर क्या है, वृंदावन है। तो हम जो है अपने जो है दादा के जो उन्हीं के जो स्थान पर जाके रहना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी में जाके रहना चाहिए। तो वृंदावन जिसने प्रभुपाल ने कहा मेरा घर वृंदावन है तो वृंदावन धाम में रहना चाहिए। तो यही है जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है। तो देखा जाता है कि जब कनिष्ठ अवस्था में लोग वृंदावन धाम को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते और यानी वृंदावन धाम को समझना मतलब है कि कृष्ण को समझना। भगवान ने जहाँ सर्वोच्च रासलीला जो किए थे वही स्थान है, लेकिन वो स्थान में रहने के लिए हमको योग्य होना पड़ेगा। उस स्थान में रहने का हमें जो है समर्थवान होना पड़ेगा, योग्य होना पड़ेगा। यही जो है जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जहाँ भगवान ने रासलीला जो है रचा। लेकिन जो उस स्तर पे जाने के लिए, उस धाम में वृंदावन में वास करने के लिए हमें योग्यता प्राप्त करना चाहिए। भगवान की रासलीलाओं को उचित रूप से समझना जानना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक वह हम जाके दोषी देखेंगे। तो हालांकि रासलीला की चर्चा तो हमारे लिए भी संभव नहीं है, तो वो तो परमहंसों के लिए है। तो वही चीज है जब वृंदावन धाम जो है महाप्रभु ने कहा, यानी कि इसका मतलब है कि हम सबका लगन होना चाहिए। हम भी जो संसार से, संसार की जो भावनाओं से, विषय छाड़िया कब शुद्ध है वो मन, कब हम हेरी व श्री वृंदावन, कब जो है हम लोग जो संसार की वासनाओं को छोड़कर हम जीवन में उस वहां तक जा सकें। यही जो हम जीवन का, चाहे साधक चाहे जहां भी हो, जहां भी अपना साधना करता हो, संसार में कुछ भी करता हो, यदि वो उसके अंदर इच्छा है तो भगवान इच्छा पूरा करेंगे। जो भगवान जो इच्छा पूरा करेंगे अंतिम समय में, अगर हमारा वास वृंदावन का है लेकिन सही ढंग से जो है इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। भगवान को तत्व से जानना चाहिए, भगवान क्या शब्द है, अन्यथा संसारिक लोगों से हम जो चीजें सुनेंगे, भगवान के जो संसारिक लोगों से अगर हम सुनेंगे तो भ्रमित ही रहेंगे। रासलीला का असली रहस्य को जो है हम समझ नहीं सकते। इसलिए जो शुद्ध भक्त है, जो जिनका जो अमल आत्मा है, जिनका मन जो मन में किसी तरह मल नहीं है, जो गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए जो इसको और गुरु परंपरा ने जो दिया, हमारे पूर्ववर्ती आचरण ने दिया, उसके अनुसार जब हमें प्राप्त होता है तब पता लगता है कि रासलीला में भी जो यही प्रकट हो रहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बहुत सारे जो है चीजें हैं जो कि हम क्रमशः अभी थोड़ी देर में हम सुनना चाहेंगे। तो जैसे हम इसमें चर्चा कर रहे थे और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे कि उद्धव जी का जो है जो प्रार्थना जो है इसमें जो इन्होंने लिया, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हम सबको क्या स्थान दिया, वृंदावन धाम। अगर हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, बहुत सरल उपाय है कि राधा कृष्ण जानने के लिए क्या है, हमें चैतन्य महाप्रभु को जान लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जानने से स्वतः ही राधा कृष्ण को जो है हम जान पाएंगे। तो ये जो कलयुग में, जैसे अभी हमारा दो दिन पहले वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस मनाए थे, तो उसमें भी हमने यही चर्चा किए थे। उनके जो चैतन्य चरितामृत पूरा प्रयाग में यही बताया जा रहा है, जो गौरांग चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवतम पढ़ेंगे तो गौरांग महाप्रभु सुनेंगे तो हमारी भक्ति जो है वो दृढ़ बन जाएगा। अच्छा, भक्ति दृढ़ बन जाएगा तब भक्ति का सर्वोच्च है भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होना, तो समझ जाएंगे। तो सबसे अच्छा उपाय है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जहाँ पूर्ववर्ती आचार्य लोगों ने वृंदावन ठाकुर ने इसलिए ये जो है ग्रंथ को रचना किए, क्योंकि हम जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे इस आंदोलन में यही है सबसे श्रेष्ठ, कि हम चैतन्य महाप्रभु को अच्छे ढंग से समझें। बहुत जो है आसान तरीका है, सीधा कृष्ण लीला को समझने से पहले चैतन्य महाप्रभु को समझे, चैतन्य महाप्रभु मूल को समझे। जैसे आज समझेंगे, महाप्रभु ने कहा कि जहां लीला रास, जो वृंदावन धाम में सबको वास करना चाहिए, सभी गौड़िया वैष्णव को। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम को प्रकट किए गोस्वामी गणों को भेजकर, अगर हम भी उनके अनुयायी मानते हैं तो हम सबका भी जो ये इच्छा होना चाहिए, लेकिन वृंदावन धाम को दूषित करने के लिए नहीं जाना चाहिए। वहाँ सही चेतना के लिए जाएंगे तो सही लाभ उठा सकते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का मूल को समझ सकते हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयो, हमारा यही है, हमारा क्या है, आराध्य ब्रजेश तनयो, कृष्ण जो है हमारा आराध्य देवता है। तद्धाम वृंदावनम, वैसे ही जो है जैसे कृष्ण आराध्य ऐसे हमारे लिए वृंदावन भी आराध्य है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन धाम में आए तो उनकी अवस्था जो है क्या हुआ था, जो अष्टसाती विकार में भावित कृष्ण भावना भावित हो गए थे, किस प्रकार से वृंद्रावन धाम में जाना चाहिए हम शास्त्रों द्वारा प्राप्त होता है, कैसे जो अक्रूर जी जो है जब किस भावना से जो वृंदावन धाम में वो आ रहे थे उसी भावना से जो है हमें वृंदावन धाम में जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और यही है, चैतन्य महाप्रभु को मूल को समझे, उनकी शिक्षाओं को समझे, उनकी विचारधारा को समझे, चैतन्य महाप्रभु किस बात से नाराज होते थे इस चीज को समझे। श्री श्रीराधिकार कृष्ण बलराम गौर नित्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन झुकी जय प्रभुपाद की जय। तो इस जो है विषय को समझे तो हमें वृंदावन धाम में वास हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन धाम प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन धाम भी जो है वो प्रिय है। रम्या काजी उपासना ब्रजपदु वर्गे नवा कल्पित, तो रम्या तद्धाम वृंदावनम रम्या काजी उपासना ब्रजपदु वर्गे नवा कल्पित मतविदम तत्र धोरणा पर, ठीक है बड़े लंबा श्लोक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ये दे रहे हैं श्री धाम वृंदावन, और श्री कृष्ण को वृंदावन धाम जो है ये श्री कृष्ण को भी आनंद देता है। तो उसी प्रकार जो है उद्धव जी का संदेश को यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे थे, उद्धव जी प्रार्थना करते हैं वृंदावन धाम से। जब उन्होंने देखा गोपियों का सारी स्थिति को तो बिना प्रार्थना किए उद्धव जी रह नहीं सकते थे। उद्धव जी के लिए अलग अलग मत है, उद्धव जी कहाँ गए थे क्या हुआ था अलग अलग मत है, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती आचार्य सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जो 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 किस भावना जो है किस भाव से उद्धव जी जो है उद्धव संदेश के नाम से एक ग्रंथ है। तो उसमें यही था जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के चले गए, हम समझे वृंदावन हमारे लिए ही इतना आराध्य नहीं है, हमारे लिए ही नहीं है कृष्ण के लिए भी कितना आराध्य है, कृष्ण भी जो कितना जो वृंदावन धाम से प्रेम करते हैं, वृंदावन धाम को कभी नहीं भूलते। तो इसी विषय को हम समझना चाहेंगे श्री प्रभुपाद जी कृपा से, श्री वैष्णव की कृपा से। तो यही था कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से अक्रूर जी आकर उनको मथुरा ले गए, मथुरा में कंस वध करने के बाद, कंस को वध करने के बाद भगवान ने फिर तुरंत कुछ समय बाद जो नंद और वसुदेव और देवकी जी उनका उपनयन संस्कार किए, उपनयन संस्कार करके उनको गुरुकुल में भेज दिए, तुरंत 60 दिनों में पढ़ाई करके वापसी आए। वापसी आके जो फिर यहाँ पर उग्रसेन जी को ही राजा बनाया गया, उन्हीं के जो है राज महल में कृष्ण बलराम रहते थे। तो यहाँ पर जो है अपने सबसे जो प्रिय ब्रजवासी है, जो भगवान ने कहा है यह यथा मा प्रपदंते तांस तथैव भजामि, जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं भी उसी प्रकार से उनका भजन करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण रुके हैं मथुरा में रुके हुए, लेकिन याद कर रहे हैं अपने ब्रजवासियों को। वहाँ मथुरा में आ तो गए लेकिन उनके मन में जो है ये चैन नहीं है, उनके मन में जो है शांति नहीं है। उद्धव जी ने देखा अखिल जगत जिन भगवान को खोज करते हैं और वो भगवान किसका खोज कर रहे हैं उद्धव जी समझ नहीं पा रहे। उद्धव जी बचपन से भगवान से बड़े प्रेम करते थे, जो जब बड़े जो है उनको जो है प्रेम करते थे। उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, गोपियों से नहीं। एक प्रसंग आती है बृहद भागवत में लिखा हुआ, किस प्रकार से जो नारद जी खोजते खोजते उद्धव तक आए, और उद्धव जी जो है उद्धव जी तक आए, बताया रहे कि उद्धव की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। और फिर बाद में ब्रजवासियों का नाम आएगा। तो उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ भक्त है, तो देखते थे कि कृष्ण जो है हमेशा विचलित रहते, किसी चिंतन में डूबे रहते हैं, किसका चिंतन करते हैं। तो हमेशा जो है कृष्ण बलराम जब मथुरा में थे तो प्रतिदिन नंद महाराज, वसुदेव जी, नंद महाराज और उनको प्रतिदिन जो है वृंदावन से अपने सेवकों के द्वारा मक्खन, दूध इत्यादि भेजा करते थे। तो कृष्ण बड़े श्रद्धा से उनका वहाँ पान करते थे, खाते थे। लेकिन ये चाहे बाहर रूप से ये मथुरा में रुके हैं, लेकिन उनका हृदय तो वृंदावन में ही है, अपने ब्रजवासियों में है। हर जगह कृष्ण का कर्तव्य है, सभी लोग कृष्ण के लिए कर्तव्य करते हैं, लेकिन वृंदावन में कृष्ण के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वहाँ कृष्ण के लिए क्या है, सिर्फ प्रेम है। ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रेम करते हैं। तो कर्तव्य में तो व्यक्ति कुछ समय रुक सकता है, लेकिन प्रेम में तो हमेशा वहीं रहेगा। तो कृष्ण जब मथुरा में है, लेकिन हृदय उनका वृंदावन में है। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में राज दरबार में बैठे हुए थे, अचानक उनके अंदर तीव्र इच्छा हुआ, अपने ब्रजवासियों को याद आ गया, अपने माता पिता का याद आया, दुख अपने सखाओं को याद आया, अपने गौओं को याद आया, श्रीधाम वृंदावन का याद आया। सभी ब्रजवासियों याद करते हुए अचानक राजसभा से उठ के जो है जाने लगे, और उद्धव को इशारा किए, उद्धव को इशारा करके उसको बुलाया। उद्धव समझ गए, क्योंकि उद्धव जैसे भक्त कोई है ही नहीं, कृष्ण के कार्यकलाप को जानते थे, और उद्धव जी जीवन में कभी किसी प्रकार गलती नहीं करते थे। तो वो तुरंत उठ के जब कृष्ण के पीछे पीछे गए, और कृष्ण उनको लेके अपने अंतपुर में गए, जो अंतपुर में ले गए, और खुद कृष्ण जो अपने बिस्तर बैठकर और उनका हाथ पकड़ के जो है, और दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए रोते हुए क्रंदन करते हुए उनको कह रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं कि गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्यम पित्रो ना प्रीति मावहम गोपी नाम योगाध मत संदेश बमर्चित बमर्चयो। हे उद्धव, गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्यम, हे शांत स्वभाव वाले उद्धव, आप ब्रज में जाओ, क्योंकि आप ब्रज में जाओ, ब्रज भेज रहे हैं, आप जाइए, क्योंकि वहां क्या मेरे पिता रहते हैं, मेरे माता पिता ब्रज में रहते हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी जो कृष्ण जो कह रहे, मेरे माता पिता जो है ब्रज में रहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके समान मेरा कोई भी नहीं है, उनके समान जो है मेरा कोई भी माता पिता नहीं है, तो रहते हैं, लेकिन आप भी जो है मेरे सौम्य हो, मेरे सबसे प्रिय हो, तो जो मेरे माता पिता है ये तुम्हारा भी माता पिता है, चलिए मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भेज रहा हूँ, आप जाके उनका दुख दूर कीजिए। विभिन्न प्रकार से जो है नंद महाराज ने कृष्ण जब बड़े जो उनको अपने सभी ब्रजवासियों को सबको समझाते हुए उद्धव को जो भेज रहे हैं। और कृष्ण ने उद्धव को क्यों भेजना चाहा, क्योंकि भगवान का जो हृदय में जो दुख है, जो भगवान का जो हृदय में दुख है, ये जो है भगवान किसके सामने प्रकट करें, कोई भी व्यक्ति नहीं था कि प्रकट कर सकते, देवकी वसुदेव को कह भी नहीं सकते थे कि मैं थोड़ी देर के मैं वृंदावन होके आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ही जो है मैं एक तो 11 साल के बाद आया हूँ, इन लोगों ने मेरा बाल लीलाओं को देख नहीं पाए, और जो क्या वसुदेव और देवकी क्या उनका कृष्ण का प्रिय नहीं है, अगर अभी मैं थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाने चाहता हूँ कुछ राज कार्य करने के लिए, तभी ये लोग इतना दुखी हो जाते हैं, मुझे बिना देखे दुखी हो जाते हैं, बड़े मुश्किल से मुझे परमिशन अनुमति देते हैं कि मैं कुछ काम के लिए बाहर चले जाऊँ, अगर वृंदावन में जाना चाहूंगा, जब भी मैं बात करता हूं तो दोनों कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, आकर रोने ही लगते हैं, देवकी और वासुदेव जी। तो मैं जो है इनको बोल नहीं पाता, मैं किसको बोलूं? वहां रोहिणी माता को बोलता हूं तो रोहिणी माता मुझे डांटने लगते हैं, तुम जाते क्यों नहीं हो, जाते क्यों नहीं हो। अब बलराम जी को बोलता हूं, बलराम जी को डांटने लगते हैं। इसलिए आप मेरे सबसे प्रिय सखा हो, सौम्यम, शांत स्वभाव के। तो इसलिए अपने जो सच्चे मित्र को जो है भगवान ने उनको वृंदावन भेजना चाहा, क्योंकि वृंदावन में जाकर वो वहां की दशाएं देख के आ जाएगा, वहां की दशा अगर देख के उद्धव जी आ जाएंगे। और कभी कभी मुझे वृंदावन का बहुत तीव्र याद आता भी है तो कम से कम मैं चर्चा तो कर पाऊंगा, अपने अपने जो हृदय की जो वेदना है उसको प्रकट तो कर पाऊंगा। मैं किसके सामने प्रकट, किसी में प्रकट नहीं कर सकता। और देखा सारा जीवन में जब कृष्ण जो चाहे द्वारिका में थे या मथुरा में थे, उन्हीं को जो है ब्रजवासियों कितनी 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 बार जो है याद किए। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे उड़ीसा के कान्हाई खुंटिया, उन्होंने भी जो है काफ़ी इसके विषय में वर्णन किए महाभाव प्रकाश के नाम से, कि इनकी क्या क्या दशा जो है कृष्ण का जो है मथुरा में कई बार होता था, लेकिन जो हमेशा याद करते रहते थे। तो कभी जगन्नाथ की विषय की चर्चा होती, उसकी से हम चर्चा कर सकते हैं। तो भगवान ने इसलिए उद्धव जी को जब भेजा और रोहिणी माता के पास गए, माता आप इनको आशीर्वाद दीजिए उद्धव को, ये जो वृंदावन धार है। तो रोहिणी माता के पास रुष्ट होते हुए ही कृष्ण स्वयं ना जाकर उद्धव को भेज रहे, वो पहले भी हमने चर्चा कर सके थे। तो जैसे तैसे मुश्किल से जो है उन्होंने उद्धव को वहाँ भेजा, उद्धव जी को भेजा वृंदावन में, और सब समझाए कि आप कैसे जाओगे, है मथुरा में लेकिन उनका मन है, कृष्ण का मन है वृंदावन में। वृंदावन का एक एक गली जो उनको याद है, एक एक स्थान याद है, वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशंत गीत कीर्ति। वृंदावन में जो रमण करने वाले हैं राधिका रमण जी, जो 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 राधिका रमण जी, जो कृष्ण है, जो कृष्ण जो है वो एक ही चीज को नहीं भूले। तो भगवान ने अनुमति दिया, ठीक है आपको जाओ, लेकिन कैसे जाओगे, किस रास्ते से जाओगे? कि आप यमुना के किनारे किनारे जाना, वहां पर जो है जब कुछ दूरी जाओगे तो वहां पर जो है मेरे कुछ परम प्रिय भक्त मिलेंगे, याज्ञिक पत्नियां जो आपको प्राप्त होगी, वो मेरे नाम कीर्तन में लगी रहती है, मेरे ध्यान में लगी रहती है, उनको प्रणाम करना, तभी आप वृंदावन धाम में प्रवेश करना आपका सफल होगा। जब तक मेरे भक्तों के प्रणाम नहीं करोगे, उनके अधीन नहीं होगे, उनके सामने झुकोगे नहीं, आप वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। वही देखा गया है आज के समय में भी जो है हम लोग भी कहाँ वृंदावन धाम में कहाँ लगन था। हम लोग जगन्नाथपुरी से होकर जगन्नाथ के दर्शन कभी नहीं किया था जब तक प्रभुपाद की शरण में नहीं आए थे। तो प्रभुपाद के चाहे अज्ञात सुकृति से आए, प्रणाम किए, कुछ गुरु पूजा के कुछ किए, फिर प्रभुपाद ने सब धाम दिए, सभी जगह जाने के जो है अवसर प्राप्त हुआ। तो कह रहे पहले आप यज्ञ पत्नियों से मिले, उनको प्रणाम करो, उनके उनसे आशीर्वाद लेके फिर आप जो है वृंदावन में जाना। और जब जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे रास्ते में? आपको मेरी मातृमयी गाय मिलेगी, जिनका मैं दूध पीता, जिन गायों का मैं दूध पीता था, वो मेरी माँ के समान ही है। भगवान कभी अपने भक्तों को भूल ही नहीं सकते, ये जो है कृष्ण का स्वभाव है एक एक चीज को। तो उनको जो अब जो है उनको उनसे उनको प्रणाम करना, कहा इस गौ माता को जो है उनको प्रणाम करना, जो मेरी अपनी गाय है जिनका दूध पीते थे, गाय तो हजारों लाखों लाखों थी। और फिर कुछ दूर जाने पर जो है मेरी सखाएं मिलेंगे आपको, मेरे जितने भी सखा जो वहां मिलेंगे, लेकिन वहां आपको एक अद्भुत चीज दिखाई देगा, कि वहां पे अद्भुत चीज दिखाई देगा कि वो लोग जो है आपको दुखी दिखाई नहीं देंगे, मेरी सखाएं जो दुखी दिखाई देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अभी भी उनके साथ ही हूं। लेकिन आप एक काम करना, आप उनको छेड़ना मत, वो जैसे वैसे रहने देना, अगर छेड़ोगे तो और दिक्कत हो जाएगा, वो लोग फिर फिर मेरे चिंतन में आ जाएंगे, तो फिर जैसे भी शांति से बैठे हुए हैं वैसे ही उनको रहने देना। और फिर उद्धव, मैं सच बताऊं क्या बात है, वहां पूरा 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 ब्रज का ये स्थिति हो चुका है, जैसे कि गर्मी के दिन में तालाब में जब पानी सूख जाता है, तो तालाब के अंदर रहने वाली जो मछलियां हैं, कछुए हैं, उनका क्या दशा होता है, वो जो वहां की जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर जैसे तैसे अपने मुख को दबाकर किस तरह से प्राण जो है बचा हुआ है, ऐसी स्थिति है। जो गांव वगैरह में रहते हैं सब चीजें वो देखते हैं, मछली जब पानी सूखने समय तो मछली कैसे छटपटाते हैं, और पानी सूख जाए तो मरने का नौबत आ गया। तो ऐसे ही जो है सारे ब्रजवासी लोग ऐसी मूर्छित दशा में सब पड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट कहते हैं कि 24 घंटे में अधिकतर समय जो है लोग मूर्छित अवस्था में रहते हैं। कुछ थोड़ी देर आपने कुछ कारोबार किए, जैसे ही कृष्ण का याद आ गया तुरंत फिर मूर्छित होके सबके सब ऐसे पड़े रहते हैं, किसका खाना पीना कुछ भी सब कुछ बंद हो चुका है। और जीते कैसे हैं, क्योंकि कृष्ण नाम का जो है, विद्यापति जी बताते हैं कि जो कृष्ण के नाम से जो अमृत है जो है, इसी कारण जो जीवित जो है सब कुछ है। तो इस प्रकार जो है आप मेरी सखाओं को छेड़ना मत, और मेरे गौओं को प्रणाम करना, और सीधा जैसे जाओगे तो वहां मेरा जो घर मिलेगा, नंदालय, नंद महाराज का जो आपको स्थान मिलेगा, उस नंद महाराज के घर में आप जाना और उनको समझाना। बड़े अच्छे भगवान ने पत्र दिए, तो मेरे ये जितने भी लोग हैं वृंदावन धाम में, ये सब मेरे क्या है, आप मेरे सुहृद है, मेरे अपने लोग हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, ये सब लोग क्या है, मेरे शुभचिंतक। तो आप जो है उनके पास जाना, इस प्रकार जो है आप माता पिता को सांत्वना देना। और यहाँ पे यही हुआ, उद्धव जी उसी क्रम से जो है वहाँ पे गए, और शाम को सुबह चले कुछ भोजन पानी करके मथुरा से चले, तो शाम वहाँ पहुँचते शाम हो गया, शाम तो अंधेरा भी हो चुका था, किसने देखा नहीं, लेकिन तुरंत नंद महाराज और यशोदा जो है उनको पता लग गया कि नंद महाराज पता लगा कोई अतिथि आया है, ये चाहे जैसे भी हो अतिथि का सत्कार करना चाहिए। तो आए, आके देखा कि उद्धव है, तुरंत पहचान गए कि जो है उद्धव है, तो उद्धव घर के अंदर लेकर गए और उनके जो अतिथि सत्कार किए करके जो फिर अभी वो क्या खिलाएंगे, तो उनके घर में तो कुछ खाने के लिए था वस्तु था ही नहीं, जब से कृष्ण बलराम गए तब से तो कुछ बना ही नहीं था। तो वहाँ पर उन्होंने फिर जो है नंद महाराज निकट ब्राह्मणों के घर में गए, जो ब्राह्मण लोग कृष्ण की लिए स्तुति पाठ उनकी सुरक्षा के लिए वाचन किया करते थे, उनके पास जाकर उनके घर से कुछ जो है भोजन मंगाए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब से कृष्ण बलराम यहाँ से गए तब से यशोदा माता का चूल्हा में जो है कुछ जला ही नहीं था, लकड़ी नहीं जला था। इसका प्रमाण कह रहे कि इसमें जो है जैसे गाँव में काफ़ी जगह रहने पर जो वहाँ पे वो जो ना जो मकड़ी का जाला बन जाता, तो कितने दिनों से जब से चूल्हा ही नहीं जला इसलिए वहाँ मकड़ी का जाला बन चुका था। और जिस तरह देवकी इस तरह से यशोदा कृष्ण जो है दोनों है, कृष्ण के याद में जो है रोते ही रहते हैं, बस उनका यही कार्य था। और तो इस प्रकार जो फिर ब्राह्मण ने घर से कुछ भोजन लाए, भोजन लाकर जो है इनको उद्धव जी पाए, प्रसाद पाने के बाद फिर जो है नंद महाराज यशोदा रानी तो महारानी तो अलग कमरे में बैठी हुई थी, नंद महाराज जो है काफ़ी दिनों तक जो है सांत्वना देते रहे उद्धव जी, विभिन्न प्रकार के सांत्वना देते रहे, कहाँ सांत्वना होने वाला था, बहुत बहुत प्रयास किए, बृहद भागवत में लिखा बहुत बहुत ज़्यादा प्रयास किए कि तरह तरह से नंद महाराज को दुख कम करूँ, चलो कुछ भी नहीं कर, थोड़ा सा एक तिल मात्र दुख जो मैं कैसे कम कर सकता हूं, इस विचार में साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी उनके पास आके बताने लगे। लेकिन देखिए हर जगह फेल हो रहा। वो कह रहे अगर मैं नंद महाराज को ये कहूं, महाराज आप रोइए मत, ये भी जो क्या है वेद धर्म के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि भगवान के लिए रोना ही तो जीवन में सर्वश्रेष्ठ है, उससे बड़ा क्या है। अभी हम दुनिया के लिए रोते हैं, अब ये आंदोलन है इसीलिए है, रोने के लिए ही है, सभी लोग रोते रहते हैं। राधिकार प्राणपति किंबाई कांदई नीति यहा बुझे भगवत समाज समाज। जो राधा रानी के जो पति है प्राणेश्वर है, यहाँ तो कृष्ण तो रो ही रहे, रो अलग बात है, लेकिन ये जो वर्तमान समय में श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में यही तो कर रहे, क्या कर रहे, राधिकार प्राणपति चैतन्य महाप्रभु किंबाई कान दई नीति यहा बुझे भगवत समाज। तो भक्तों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात हो गया, भाई ये जो परम भगवान है चैतन्य महाप्रभु जो रो रहे हैं, इस रोने का क्या रहस्य है। और सारे भक्त लोग इसके लिए चर्चा कर करके स्वरूप दामोदर रामानंद राय शिक्षी महाती ये सब चर्चा कर कर ये लोग भी रो रहे हैं। बस रोना ही जो है ये आंदोलन का कार्य है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना मतलब कीर्तन करना क्या है कि रोना ही है, भगवान के प्रति रोना है, भगवान अपनी सेवा में लगाइए। तो यही है कि हम दुनिया के लिए रोते हैं, हम भगवान के लिए रोना रोना चाहिए। अब भगवान के लिए नहीं रोएंगे तो कृष्ण के लिए रोएंगे, नहीं सॉरी दुनिया के लिए रोएंगे। जैसे अब ब्रजवासी लोग भी क्या है, ये कृष्ण के लिए रो रहे हैं, ये जीवन का सार्थकता है। अब भगवान किस भक्त बने मतलब रोना ही है ना? भगवान राम भी आए थे तो भगवान राम भी सबको रुलाया, रोने से भक्ति बढ़ती है, ठीक है। तो यही जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, तो जो है यहाँ उद्धव जी ने काफी प्रयास किए करने के बाद, तो उद्धव जी उस नंदालय का नंद भवन का सारे दृश्य देखकर जो है आश्चर्यचकित हो गए। पूरा जितना ताकत था सबका सब ताकत लगा दिए, लेकिन वो जो क्या हुआ फेल हो गए कि इनमें नंद महाराज को यशोदा रानी को थोड़ा सा भी दुख कम करने में असफल हो गए। चलो कह रहे अभी हाथ जोड़ लिया, भाई अभी तो मेरे से ये हो नहीं सकता किसी भी हालत में, मैं जितना जो देवलोक में ज्ञान सीख के आ गया सब सहायता में ढूंढ लिया निचोड़ निकाल लिया, मैं इनके दुखों को कम कर नहीं सकता। फिर कहते महाराज नंद महाराज यशोदा ब्रजेश्वरी जी आप धन्य हैं, आप कृष्ण के जो रो रहे हैं यही धन्य है। वास्तव में देखा कि आपके लिए कृष्ण के लिए कितना प्रेम है, यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो नंद महाराज कहते उद्धव तुम वास्तव में तुम तो देखो कृष्ण के लिए वात्सल्य भाव है तो उद्धव के लिए वात्सल्य भाव होगा, तुम वास्तव में देखो तुम बड़े बड़े बहुत बड़े जो है मूर्ख हो, तुम बड़े तो हो गए हो लेकिन तुम्हारा बुद्धि जो कच्ची है। अरे तुम कह रहे हो कि मैं जो है कृष्ण के लिए प्रेम है मेरे अंदर क्या प्रेम है, प्रेम तो था दशरथ महाराज के पास, जैसे ही राम चले गए उसे तुरंत शरीर छोड़ दिया, अब मेरा तो शरीर नहीं छोड़ता। तो आप कह रहे हो कि प्रेम में वास्तव में देखा जाए जो आपकी जो है असमझ है। देखा कि भाई हाथ जोड़ लिया, भाई अभी तो इनसे नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद वो गए गोपियों के पास, चलो दूसरा आदेश दिया था मेरे गोपंगनाओं के पास जाओ, उनके पास जाके उनके पास जो है गोपानम मत वियोगार्थ, मेरे वियोग में गोपियां रहती हैं उनके पास जाओ, उनके पास जो भी हुआ है भागवतम में भ्रमर गीत के अनुसार आचार्य टीका के अनुसार जो है, तो जिस तरह से गए तो अब ये भी देख लिए कि अब गोपियों का भी जो भाव है उसमें भी मैं असमर्थ हूँ। इनकी जो भावनाएं हैं गोपियों की भावना ये नंद यशोदा की जो भावनाएं हैं ये वेदों में भी वर्णन नहीं हो सकता, और चारों वेद ही पढ़ ले तब भी जो कुछ जो है उसमें से दिख नहीं पाएगा। सर्व वेदेशु दृश्यते, मिलेगा नहीं। तो अब उन्होंने यही कहा, व्यास जीवन में और कुछ भी जो है बचा ही नहीं है, और कुछ भी जो जीवन में बचा नहीं है। तो अभी उन्होंने क्या किया, अब गोपियों के साथ आप देखिए उद्धव जी क्या होता, गोपियों के साथ जो है उद्धव जी जाके हर जगह क्या देख रहे हैं, गोपियां इतनी सुंदर कृष्ण कथा करती हैं, वार्तालाप तो होता ही है उद्धव जी के साथ, जो दशम स्कंद पढ़ चुके पता है, तो वार्तालाप होता ही है, तो दिखाते यहाँ कृष्ण ये लीला किया था, यहाँ पे कृष्ण ये लीला किया था, यहाँ कृष्ण ये लीला किया था, और उन कथाओं को शुद्ध हृदय वाली गोपियां जब वर्णन करती है, तो उद्धव जी जब उनके मुख से कथा सुनते हैं तो उनको लगता है ये कथा ही नहीं है, ये प्रत्यक्ष कृष्ण की लीलाएं हैं। तब जो है उस कृष्ण कथा को नमस्कार करते हैं उद्धव जी कि धन्य है वो कृष्ण कथा। कृष्ण कथा मतलब कृष्ण की साक्षात लीलाएं, भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, गुण में, लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने देखकर अब क्या क्या देगा उद्धव जी, क्या देंगे वृंदावन धाम में जो गए थे, अब ब्रजवासियों क्या देंगे, क्या है उनके पास। तब जो है इस श्लोक को जो है आज जो बता रहे हैं, इसे काफी प्रार्थनाओं की है, काफी प्रार्थना करते हुए गोपियों की जो भाग्य की सराहना करते हैं, गोपियों की भाग्य की सराहना करते हैं, ब्रह्मा शिव जितने भी देवता हैं जिनको ये लोग मन में स्मरण करते हैं, जिन कृष्ण का, जिन मुकुंद का मन में स्मरण करते हैं, वे मुकुंद इन गोपियों को जो है उनके 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 जो कंधे में अपना हाथ रखते हैं साक्षात रूप से। तो देखो कि गोपियों का क्या सौभाग्य है। अब नारद जी चले थे, उद्धव जी का सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, उद्धव जी, तो अभी प्रकट हो रहा है। उद्धव जी कह रहे कुछ भी नहीं हूं मैं तो कुछ भी नहीं जो इन गोपियों के सामने अब निकला, जो सर्वश्रेष्ठ क्या गोपी हां क्या है, ये है सर्वश्रेष्ठ भक्त जो है ये है इन ब्रज गोपियां, जो ब्रज की गोपियां। तो वहां पे उन्होंने सब कुछ सब स्तुति करने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो इस प्रकार जो उनके उद्धव जी कहते हैं कि मैं इस वृंदावन धाम में क्या क्या ये है कि मैं आशा मोह चरण रेणु जुषा महम श्याम, मैं यहाँ पे क्या है वृंदावन किमपि गुल्म लता औषधीना, मैं इस वृंदावन में एक पौधा बन जाऊं, एक लता बन जाऊं, कुछ तो बन जाऊं, यही मेरी एक कामना है। क्योंकि मुझे गोपियों का, ये गोप कुमारियों का चरण रस जो है थोड़ा प्राप्त होते रहे, इससे जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य और कुछ भी नहीं है, है ना। तो जिन्होंने सब कुछ छोड़कर कृष्ण की शरणागत हो गई, शरणागत हो गई, वे जो मुकुंद जो है ये जो है, ये जो भगवान जो है जो इनसे जो इतना प्रेम करते हैं, इन गोपियों से इतना प्रेम करते हैं, क्या भाग्य की सराहना करते हैं इनके, इनकी जो है कृष्ण के प्रति कितना जो रूढ़ भाव भक्ति है, दृढ़ भाव कितनी जो भक्ति है, उसको देखकर जो है साक्षात बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तम जो है बृहस्पति के जो शिष्य है उद्धव जी जो है उनकी जो और जो कुछ समझ नहीं पाए, बस यही के ये उन्होंने लास्ट में यही कहा कि बस क्या करना चाहिए, बस यही है जैसे तैसे भी कोई व्यक्ति अगर अगर भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आ गए। ये लोग कौन थे ब्रजगोपियां, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, किम स्त्रियां थी, किम स्त्रियां बनचरा, वो भी जंगल के रहने वाले, वन में रहने वाले स्त्रियां थी, और बाकी काफी कह रहे काफी अच्छे अच्छे इसमें शब्द आया, लेकिन अब इसमें इसको अगर चर्चा बहुत समय भी चाहिए नहीं तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों ने भगवान के प्रति ऐसे दृढ़ श्रद्धा भक्ति अगर इन लोगों ने उत्पन्न कर लिया इन गोपियों ने, तो चाहे जैसे तैसे व्यक्ति को कृष्ण के संपर्क में आ जाए वो शुद्ध हो ही जाता है, ये भगवान की जो है भगवान के प्रति भक्त का भाव है। जैसे तैसे भगवान के पास आ जाए भगवान व्यक्ति शुद्ध हो ही जाता है। और ये तो गोपियां जो शुद्ध हो गए कृष्ण को प्राप्त कर गए उनमें ये महाभाव प्रकट हो गया, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। अगर किसी को अमृत मिल जाए उसको पता नहीं कि अमृत है, अगर गलती से चख भी लिया तो अमृत अपना काम करेगा ही। तो उसी प्रकार चाहे कोई योग्य हो या अयोग्य हो, अगर कृष्ण के पास आ गया तो व्यक्ति शुद्ध हो ही जाता है। बाकी किसी के पास जाएंगे तो वो हो नहीं पाएगा। बाकी किसी के पास जाओगे, कोई देवी देवता पास जाओगे, शिव जी के पास जाओगे, बोलोगे मुझे ये चाहिए तो दे देंगे फिर ठीक है, तुम्हारा जैसे मन को ऐसे रहेगा। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, अमार भजे विषय मांगे सही बड़ो मूर्ख, लेकिन अमी विज्ञ सही मूर्ख विषय के न दिव, लेकिन मैं तो जानता हूं ना उसके भला क्या है। स्व चरणामृता दिया विषय भुलाएगा, मैं अपने चरणामृत पिलाऊंगा, चरणों का अमृत पिलाऊंगा, उसको क्या करूं उसको शुद्ध कर दूंगा, ये जो मेरा कर्तव्य है। तो इस प्रकार कहकर बास लास्ट में यही कह दिया उद्धव जी ने, बंदे नंद ब्रजस्त्रीणा, मैं वंदना करता हूं नंद महाराज के इस वृंदावन धाम को, उनके जो है ब्रज गोपियों को, सभी जो है मातृमय गोपियों को, सभी को क्या, सभी स्त्रियों को, या बंदे ब्रजस्त्रीणा पाद रेणु, मुझे क्या है बस उनके चरण कमलों का धूल प्राप्त हो जाए। देखिए प्रभुपाद बताते हैं चैतन्य चरितमृत तात्पर्य में, यहां पर डायरेक्ट हम गोपियों का अनुगत भी नहीं होना चाहते। भक्त क्या है, हम गोपी का अनुगत नहीं, ये भी नहीं होना चाहते, हम उनके चरण के रज का जो है इच्छा करते हैं, ये भक्त का जो भाव होता है। ये है कि भक्त का दास दास अनु दास दास अनु दास दास अनु दास, ये हमारे लिए क्या है, ड्यूटी है। तो कह रहे उनके चरण कमलों को प्राप्त हो जाए, जिसके कथाएं जो है, जिन परम भगवान की कथाओं को जो सुनकर तीनों जगत यशहरि कथा दो गीतम पुनंति भुवनत्रयम, तीनों लोकों में जब कृष्ण कथा होता है तो तीनों लोक जो है क्या है, पवित्र हो जाता है। ऐसी जो कृष्ण कथा को धन्य है जो गोपियों के मुख से जो है सुने। तो वास्तव में देखा जाए जो इस रासलीला का रहस्य समझने के लिए जो शुद्ध हृदय वाला का जो है के द्वारा सुना जाए तभी समझा जा सकता है। राधा कृष्ण की लीलाओं में रासलीला में कोई भी दोष नहीं है, हम तो अगर मुंह से ही बोल रहे हैं अभी भी, लेकिन देखा जाए जब हम अपने जो है पूर्ववर्ती आचार्यों से और वर्तमान जो गुरुजनों से जो सुने हम लोगों ने, कि यही है कि इसमें कोई भी दोष नहीं है। जब ऐसे शुद्ध हृदय वाले जैसे गोपियों का मुख से जब सुनकर उद्धव जी का अनुभव हो रहा है, कृष्ण की लीला आज भी वृंदावन में प्रकट हो रहा है, तो ऐसे ही अगर भक्तों से मुख से जब सुना जाएगा रास पंचाध्यायी भी, तब लगेगा हाँ ये तो भगवत्ता का प्रकट हो रहा है। आज देखा जाए छोटी सी दो मिनट का, हालांकि रासलीला फिर गलत किया है, क्या गलत है, कोई गलत नहीं। बार बार भागवतम के अंदर जो है यही कहते सब लोग, सभी गोपियां चाहते हैं कृष्ण के जो चरण कमलों को हम अपने हमारे बक्षस्थल पर धारण करें, तो गलत भी नहीं है कि सारी जो है, अगर कोई पुरुष भावना में होगा, कोई बॉडली कॉन्शियसनेस में होगा, उसको लगेगा हा ऐसे कैसे बात हो रहा है, ये तो काम वासना है ना। लेकिन गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण के चरण कमलों को कैसे सुख प्राप्त हो। अब सारी देखा जाए सभी तो गोपियां ही हैं, सभी तो प्रकृति है, चाहे मंजरी हो गोपी हो, अब हम सब क्या प्रकृति है। अभी हम चाहे किसी 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 पुरुष के देह में है या स्त्री के देह में है, तो सभी देखा सभी तो भगवान का ही दासियां हैं सब। इसमें क्या है, एकमात्र पुरुष कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण, तो फिर इसमें क्या दोष है। ये छोटा सा बाकी इसमें बहुत चीजें जो है चर्चा हो सकता है, इस प्रकार से यही है। तो ऐसा ये लेना चाहिए कि इसमें कोई किसी प्रकार का दोष हो नहीं सकता। इसको जब शुद्ध हृदय वाले भक्तों के मुख से सुनेंगे तभी जाके जो है हम ठीक से समझ पाएंगे। और यही है जो चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे थे कि सर्वत्याजी वृंदावन यहाँ ले, तो वृंदावन में रहने का यही यही जो है रहना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो वृंदावन को रहने से पहले वृंदावन धाम को जानना पड़ेगा, कृष्ण को जानना पड़ेगा, उस भावना में रहेंगे तभी जो हमें जो है असली लाभ जो है प्राप्त होगा। नहीं तो हम वृंदावन धाम में जाकर क्या करेंगे, दूषित ही करेंगे। वहाँ जाकर क्या है, आजकल सब जगह जो है टीवी लगा हुआ है, हम भी जाते हैं किसी होटल में कुछ रुकते आश्रम में रुकते टीवी, अरे हमारे गोस्वामी गण यहाँ ले यहाँ रहकर राधा कृष्ण लीलाएं स्मरण करते थे, हम क्या स्मरण करते हैं, दिल्ली का न्यूज, यहाँ का न्यूज, संसार का न्यूज, यही करके राधा वृंदावन धाम में करके दो दिन रुक के फिर हम ये करके आते। तो ये जो है ये है जो वृंदावन असली धाम है, और चैतन्य महाप्रभु धाम दिया है, और हम सबको निडर होके ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि हमारा जो अंत जो है वृंदावन में ही हो, हमारा अभिलाषा पूरा हो, जो महाप्रभु देने के लिए आए थे उनकी अभिलाषा पूरा हो जाए कि हम सब वृंदावन धाम में बसेंगे तो महाप्रभु की इच्छा पूरा होगी, वो भी देने के लिए आए थे उन्नत उज्जवल रस, तो हम भी हैं। ये नहीं कि हम वृंदावन धाम में जाके बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सच्चा भक्ति करने के लिए हम वृंदावन धाम में जाना चाहिए, यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न है प्रेमंजन प्रभु।
धन्यवाद। तो जैसे श्लोक में भी आता है कि आप जैसे बताए, मैंने जैसे सुना है कि वृंदावन एक हाईएस्ट प्लेस है जाना है, स्थान निवास करने का, और किस प्रकार से हम वृंदावन में रह सकते हैं जैसे आपने व्याख्यान किया, परंतु हम अक्सर ही सुनते हैं कि जैसे माधुर्य रस है उससे ऊपर है औदर्य रस, कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सबको देने आए हैं, और फिर हम ये भी देखते हैं कि शिला प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़कर अन्य जो उनके गुरु की आज्ञा थी उस स्थान पर रहकर उन्होंने वो सेवा की, तो हाईएस्ट तो वो स्थान होना चाहिए जहाँ पर, ऐसा नहीं है कि, मेरा प्रश्न है कि जहाँ पर गुरु की आज्ञा है रहने के लिए, परंतु हम यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि वृंदावन हाईएस्ट है, तो इन दोनों बातों को कैसे समझ सकते हैं। मेरे एक दो प्रश्न है, पहला प्रश्न है
अगर हमारा हम गुरु के आदेश के अनुसार हम कार्य करते हैं तो भगवान उस इच्छा को पूरा करते हैं। जो प्रभुपाद भी राधा मदन मंदिर छोड़कर वो पूरा विश्व में गए, गुरु का आदेश से उन्होंने जो है सब प्रचार किए, लेकिन उनका अंतिम इच्छा जो है भगवान इच्छा पूर्ति किए, वृंदावन धाम में उनकी जो है अंतिम जो है, इतनी देखते हैं लीला मृत्यु भी इतनी अवस्था में बाहर, तो लगभग 6 महीने पहले बाहर चले गए थे, फिर प्रभुपाद जो है दोबारा वृंदावन धाम में आकर, नहीं अभी ट्रैवलिंग बंद, अब जो है मुझे कृष्ण जाना है, तो भगवान इच्छा पूर्ति करते हैं। अभी गुरु के आदेश के अनुसार हम सेवा भी करें और हृदय में वृंदावन धाम को स्मरण करें, हरिनाम को स्मरण करें, जैसे हम कथाओं को स्मरण करें, तो धीरे धीरे हमारे हृदय से बन जाएगा तो भगवान हमारी इच्छा पूर्ति कर देंगे। तो ये हमारे गुरु के आदेश से हमें आदेश का पालन करना चाहिए, तो हमें वृंदावन धाम वास मिल जाएगा। एक ही हुआ, दूसरा क्या था?
तो जैसे आपने बताया कि मथुरा से कैसे कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, तो इन दोनों बातों को कैसे समझा जाए कि जैसे अक्सर कई लीलाओं में भगवान अपना विस्तार कर लेते हैं, जैसे 16,000 रानी थी तो वहाँ विस्तार करके सबके साथ रह रहे थे, या बहुल और श्रुतदेव के वहाँ ब्राह्मण और जो राजा था उन दोनों के साथ एक साथ गए और किसी को पता नहीं था, तो यहाँ पर भी तो भगवान ऐसा कर सकते थे कि भगवान विस्तार करके वृंदावन में भी रह रहे हैं और मथुरा में भी। और फिर इसका दूसरा पहलू है कि हम देखते हैं, ये भी सुनते हैं कि वृंदावन से भगवान कभी छोड़ के जाते नहीं है, तो मतलब ऐसे कन्फ्यूजन सा।
देखिए हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण की भक्ति में थोड़ा खतरा भी है कि भगवान कृष्ण जो है अपनी लीलाओं के समय सबको रुलाते रहे, रुलाना ही उनका जो कार्य रहा, जब थे तब भी रुलाए कई बार। एक उड़ीसा के कवि हैं, उन्होंने कहा था, उन्होंने बड़ा सा लिखा कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद जो है उनका भविष्यवाणी करने के लिए गर्गाचार्य उनका तो नामकरण कर दिए थे, लेकिन जन्मपत्र दिखाए, उनके अपने कुलगुरु थे ब्रज का भांगुरी ऋषि, तो भांगुरी ऋषि आए, उन्होंने ये कहा, महारानी देखो मैं तुम्हारा पुत्र का भविष्य बता रहा हूँ, ये जो है क्या करेगा, ये जो तुम्हें सारा जीवन भर तुम्हें रुलाएगा, रुला रुला के तुम्हें जो है तो तुम्हें रुलाएगा, यही करेगा। कैसे? मटकी मटकी फोड़ेगा, ये करेगा, गोपियों का वस्त्र चीरहरण करेगा, तुम्हारा शिकायत आएगी, ये करते करते लास्ट में कहा तुम्हें एक दिन वो छोड़ के भी चले जाएगा। फिर जो है वो छोड़ के भी तुम्हें जो चले जाएगा, यही तुम्हारा पुत्र का जो है क्या भविष्यवाणी है, तो बता दिए थे। तो भगवान ने यही जो रुलाते, भगवान रुलाते इसलिए इसलिए राधा गोविंद महाराज बताते भगवान इसलिए रुलाते हैं क्योंकि उनके प्रति और उत्कंठा बढ़े, और उत्कंठा जो है बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, तो यही दिखाने के लिए जो भगवान होते हैं। लेकिन ये हमारा सामान्य रोने से अलग है, अंदर कृष्ण होते हैं, सुख है कृष्ण का, रोने में ही कृष्ण को जो है वो लोग गोपियां जीवित थी इसीलिए मूर्छित अवस्था में थी इसलिए वो जीवित थी, याद उठते ही तो वो तो याद आते थे। अब मूर्छित अवस्था में होती है क्या, कृष्ण का स्मरण में वो पड़ी रहती है, तो उसमें उनका जो है कितने 100 साल तक इस प्रकार से सारे ब्रजवासी ब्रजवासी लोग ऐसे थे वृंदावन धाम।
बट द्वारका की रानियों को रुलाया नहीं,
हाँ
सिर्फ वृंदावन के
तो वो श्रेष्ठ है ना ब्रज की, इसलिए ब्रज की गोपियां श्रेष्ठ हो ना, सबसे सर्वोच्च गोपियां हुई है इसलिए उनको सर्वोच्च चीजें मिला। ये परकिया है, इसलिए जो परकिया है जो गौड़िया वैष्णव बनना चाहते हैं, परकिया रस आस्वादन करना चाहते हैं, तो फिर उनको ये प्रोसेस। तो आज यथाकिंचित जो है हमने यथकिंचित जो हमने जो है ये यहाँ पे जो चर्चाएं किए थे और जितना मेरी बुद्धि थी ये थी, और सोचा कि अपने शुद्धिकरण के लिए तब ये चर्चाएं की, तो इसके लिए अगर सबको सब भक्त लोग सब समझ गए होंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, श्री आराधिकार भगवान की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ग्रंथ चैतन्य चरितामृत की जय, निताय गौर प्रेमानंदी श्रीमान पार्थिव प्रभु की।